आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आरा की एक अदालत ने बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने 6 आरोपियों को दोषमुक्त किया। रोहतास जिले के इब्राहिमपुर गांव में अगलगी की घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की झुलसकर मौत। सीवान में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु। और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान चैत्र नवरात्र आज से शुरू। हिंदू नववर्ष की भी आज से हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद उनका यह बिहार का पहला दौरा होगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री शाह आज बिहार आने वाले थे, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए द्वारा 400 सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद श्री पासवान ने कहा कि विपक्ष के पास उम्मीदवारों का अभाव है, जिस कारण अभी तक कई सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है।
और जो लक्ष्य 400 सीटें जीतने का देश भर में हम लोग को मिला है, उस 400 सीटों के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटों का एक अहम योगदान है, तो उसको लेकर रणनीति और कैसे आगे बढ़ानी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री अब पहले चरण का मतदान अब होने को आया है और अभी तक इन लोगों के प्रत्याशी सामने नहीं आए, या तो प्रत्याशी है नहीं, मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर गठबंधन में कुछ नाराजगी है एक दूसरे से।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया के चाकन में पार्टी प्रत्याशी कुमार सरबजीत के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश आज संकट के दौर से गुजर रहा है। श्री यादव ने कहा कि देश भर में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। श्री यादव ने कहा कि एनडीए सरकार ने युवाओं को पीछे धकेलने का काम किया है। चुनावी सभा को विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए के नेता अपने बिहार दौरे के क्रम में मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं।
ना बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, ना बिहार के पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, ना बिहार में गरीबी मिटाने के बारे में बात कर रहे हैं, ना बिहार में निवेश की बात कर रहे हैं, ना बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे हैं, ना बिहार में किसानों का आय दुगुना कैसे हो, ना इसकी बात कर रहे हैं। आप लोग केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के जो 13-14 करोड़ की जनता है, उसकी खुशहाली कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एनडीए सरकार विकास की बात करती है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है।
400 के पार इस संकल्प को दोहराएंगे। आज मेरे क्षेत्र में यात्रा शुरू हुई है, सबों का धन्यवाद अभिनंदन। हम ऐसे ही काम करते हैं, हर क्षण में हमारी चिंता लाभार्थियों की होती है। मोदी जी के द्वारा जो भेजा गया उनके पास कितना पहुंचा, कितने संत और आगे करेंगे और विकास की बात बहुत करेंगे।
भारतीय निर्वाचन आयोग दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने को तैयार है। मतदाताओं के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रौद्योगिकी को अपनाया है। एक रिपोर्ट।
चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशी को जानना यात्रा शुरू करने से पहले नक्शा जानने के समान है। यह मतदाताओं को सही उम्मीदवार के चयन में मदद करता है। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकर मतदाता संभावित नुकसान से बच सकते हैं और ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं जो उनके लिए काम करे। इसके साथ ही उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को जानने का एक यह फायदा भी होता है कि अगर उसका कोई आपराधिक इतिहास है तो मतदाता इसके लिए उससे जवाब मांग सकता है। अपने उम्मीदवार के बारे में जानने के लिए चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट या KYC नाम के एक ऐप को बनाया है। यह एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। ऐप पर मतदाताओं को बस चुनाव का प्रकार और निर्वाचन क्षेत्र डालना है। इसके बाद उस निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी। मतदाता ऐप पर किसी विशेष उम्मीदवार के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह ऐप न सिर्फ यह बताएगा कि उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है या नहीं, बल्कि मामलों का विवरण और उनकी वर्तमान स्थिति की भी जानकारी देगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं दुर्गेश भदौरिया।
लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज जानकारी कटिहार लोकसभा सीट की। कटिहार बिहार के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
सीमांचल की कटिहार लोकसभा सीट पर पिछले 2 दशक से एनडीए का दबदबा है। पिछले 5 चुनाव में से 4 बार एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वर्तमान में जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी इस सीट से सांसद हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने तारिक अनवर को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। तारिक अनवर अब तक 5 बार कटिहार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दुलाल चंद्र गोस्वामी का मुकाबला तारिक अनवर से ही हुआ था। इस चुनाव में श्री गोस्वामी ने लगभग 57,000 मतों से जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से कुल 9 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच ही माना जा रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र में बरारी, कानपुर, मनिहारी, बलरामपुर, कदुआ और कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से कटिहार सदर और कानपुर सीट पर भाजपा का कब्जा है। बरारी विधानसभा सीट पर जदयू, कदुआ तथा मनिहारी सीट पर कांग्रेस और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र पर सीपीआई माले के विधायक हैं। इधर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 6 मामले दर्ज किए गए, वहीं 40 लाख रूपये से अधिक नकद बरामद किए गए। साथ ही भारी मात्रा में शराब और मादक पदार्थ भी जब्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एप सैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। और अब विषय लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज के इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम चंपारण और वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
पश्चिम चंपारण जिले में पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में 6ठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। चुनाव घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन इन दोनों सीटों पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुट गया है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर इत्यादि चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी का हटाने का कार्यक्रम है और हमें लगता है कि करीब करीब सब जगह से हट चुका है और जो भी बचे हैं वो 3 बजे तक अंतिम समय दिया गया है।
बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
प्रयास है कि हर हाल में तो आम वोटर अपने भयभीत माहौल में पाए और चुनाव में बढ़ चढ़ उत्सव के रूप में भाग लें, मेट्रो का भागता सुनिश्चित करें और ये बेतिया और बलरामपुरी जिला आश्वस्त करती है आंसुओं के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति जो चुनाव कार्य को प्रभावित करने की बात तो बहुत मुश्किल बात है, अभी वो सोचता भी है, उसके सोच में भी निर्णय हुआ है
पश्चिम चंपारण जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदियों की मदद ली जा रही है। पहली बार वोट करने आए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, मैं इस साल 2024 में अपना पहला वोट देने जा रहा हूँ और मैं उसी कैंडिडेट को दूंगा जो शिक्षा में अच्छे से करे, हम लोगों को स्कूल प्रोवाइड करे, मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगा।
इधर जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्रों पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर में राजनीतिक दलों का चुनाव अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
आरा की एक अदालत ने बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में ब्रजेश मिश्र और हरीश मिश्र समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके अलावा 6 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। सभी दोषियों को अगली सुनवाई में सजा सुनाई जाएगी। विशेश्वर ओझा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। 12 फरवरी 2016 को अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। चक्रवात के परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश भर के मौसम में बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर बादल छाये रहने और छिटपुट बारिश होने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में 39.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ मधुबनी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एस के सुमन ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
वर्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 से 3 दिनों के बाद थोड़ी बूंदाबूंदी हो सकती है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य भाग में कुछ स्थानों में 2 दिनों के बाद थोड़ी गरज के साथ बूंदाबूंदी हो सकती है। अभी मौसम 48 घंटे तक बिल्कुल शुष्क बनी रहेगी।
रोहतास जिले के कछवा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक घर में आग लग जाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। घटना में झुलसी एक महिला और एक बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। इधर सिवान गोरखपुर मुख्य रेलखंड पर मैरवा के सुमेरपुर ओवरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। अनुष्ठान के पहले दिन आज माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। इधर आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। एक पर 11 अप्रैल और रामनवमी पर 17 अप्रैल को शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं होगा। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आरा की एक अदालत ने बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने 6 आरोपियों को दोषमुक्त किया। रोहतास जिले के इब्राहिमपुर गांव में अगलगी की घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की झुलसकर मौत। सिवान में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु। और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान चैत्र नवरात्र आज से शुरू। हिंदू नववर्ष की भी आज से की शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।